يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. أما بعد، إن شاء الله سورة البقرة کی چار آیات ہیں، 44 سے 48 تک. پیچھے ہم لوگوں نے 43 تک آیت پڑھی تھی. تو تذکرہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، کیا تم انسانوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو یا حکم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو یا اس کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ سب سے پہلی بات یہاں پہ یہی آ رہی ہے کہ تم لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہو. بر، ان انسانوں کو، جو بر کیا چیز ہے؟ بر اصل میں بر سے ہے، جو اس کا روٹ ہے، اور بر اصل میں زمین کو کہتے ہیں بر، تو اس کی روٹ سے یہ بات آئی ہے. یعنی کہ اس طرح سیدھی چیز یا اس طرح سیدھی بات جو بالکل فلیٹ ہو، جس میں کوئی خم نہ ہو، اصل میں یہ اس کا ایٹومالوجی ہے اس لفظ کی. یعنی جو الفاظ ہوتے ہیں، ایک اس کا روٹ ہوتا ہے، ایک اس کی بنیاد ہوتی ہے کہ کہاں سے لفظ آیا ہے، اور جس کو لغوی معنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ایک ہوتے ہیں اصطلاحی معنی، الفاظ کے جو اصطلاحی معنی آتے ہیں کہ کن معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا ہے یا کن معنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو استعمال کیا ہے، وہ ہم پھر اس لفظ کی تشریح جو ہے نا قرآن و سنت سے لیتے ہیں. تو یہی خوبصورتی ہے قرآن کی، جو مسلسل ہم بتا رہے ہیں کہ قرآن اپنے الفاظ کی تشریح خود بیان کرتا ہے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے وہ الفاظ جو ہے نا واضح ہوتے ہیں کہ ان کے کیا معنی ہیں. اصل میں قرآن کیا کہتا ہے بر کے بارے میں؟ یہ سورۃ البقرہ کی 177 آیت ہے. اگر آپ دیکھیں گے اس میں آیت بر بھی کہا جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتوا الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. اللہ کہتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے، یعنی بر یہ ہے، کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو، اللہ اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال، رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگ دستی مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہ ہیں راست باز لوگ، اور یہی لوگ متقی ہیں. بڑی خوبصورت تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. تو دیکھیں، اس کی تفصیل میں ہم مزید نہیں جائیں گے، ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دائی ہے، ہمیں دیکھیں اپنی ریفلیکشن بھی اس کی لینی ہے، ان کی بات تو اپنی جگہ، کہ دائی جب بات کرتا ہے یا ممبر پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں، وہ عموماً ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کے لیے خود بھی قابل عمل نہیں ہوتی. ایک اس کا یہ پرسپیکٹیو ہے. آپ لوگ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ مثالیں دی جاتی ہیں تقویٰ کی یا عبادت کی، کہ فلاں بزرگ تھے، وہ ایک ہی وضو سے عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور اسی کے سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، اور اس طرح کی قرآن کی بات ہے کہ وہ ہر تیسرے دن قرآن کو ختم کرتے تھے. اس طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں، جس کا مقصد تو اصل میں بنیادی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دی جائے اور ان کو آگے سے آگے کی دعوت دی جائے، लेकिन इसका मैं समझता हूँ कि इसका एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि जो आम बंदा है जो नमाज तक नहीं पढ़ता, वो जब ऐसे खुतबों में बैठेगा तो वो कहेगा यार ये इस्लाम तो मेरे करने का काम नहीं है, ये तो अल्लाह की इबादत मेरे करने के काम नहीं है। यानी इस आयत में उसी तरफ इशारा हो रहा है कि तुम लोग असल में दीन को इतना सख्ती से पेश करते हो कि वो तुम्हारे लिए खुद भी काबिल अमल नहीं है, और ये तुम भूल जाते हो कि तो जो तुम दावत दे रहे हो, जिस चीज के तुम टारगेट लोगों को अचीव करने का कह रहे हो, वो तुम्हें खुद भी तो करना है। ठीक है, तो तुम दीन को क्यों मुश्किल बना के पेश करते हो? और ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट यही होता है कि जो आम बंदा है जो इतना तकवा में आगे नहीं है या अपना उसमें, तो वो लाजमी बात है वो समझता है कि ये तो मेरा बस का काम नहीं है। फर्ज किया नमाज की मैं मिसाल देता हूँ, अब हमारे जो बरसगीर में नमाज का तस्वुर है वो ये है कि असल में तो फराइज हैं जो इंसान ने अदा करने हैं, जिस तरह जोर की नमाज आप देखें जिसमें चार फराइज हैं। अब अगर आप मुकम्मल नमाज जिस तरीके से हमारे उलमा पेश करते हैं कि उसके बगैर आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होती है, तो आम बंदा जो है अब काम के दौरान वो कहेगा यार इतनी बड़ी नमाज में किस तरह पढ़ूंगा मैं, चले बाद में पढ़ लूंगा या मिला के पढ़ लूंगा, या अमूमन फिर लोग पढ़ते ही नहीं है। तो अगर उसको ये पता हो कि यार ये चार फर्ज हैं और ये तो 2 मिनट का काम है असल में मेरा, कम से कम ये तो मैं पढ़ लूँ ना, यानी कि जो लाजमी चीज है वो तो मैं कर लूँ, बाकी जो सुनन है या जो नवाफिल हैं वो मैं वक्त निकाल के कर लूंगा जब भी होगा, लेकिन इस वक्त लाजमी है कि मैं ये चार फर्ज कर लूँ। तो ये दीन में जो सख्ती बना के पेश की जाती है, इसमें कुरान में मुख्तलिफ जगह पे और भी इशारा मौजूद है इसकी तरफ, यहाँ पे भी बात है कि तुम असल में ये भूल जाते हो कि इन चीजों पे खुद भी तुम लोगों ने अमल करना है। अगर तुम खुद उस पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो और अपने आप को भूल जाते हो तो वो बात तुम क्यों करते हो? और ये है कि तुम किताब को पढ़ते हो कि किताब जो है लोगों को सख्ती की तरफ नहीं बुलाता बल्कि आसानी की तरफ बुलाता है, और अल्लाह ताला जिस तरह फरमाते हैं कि मैं किसी शख्स पे वो बोझ नहीं डालता जो वो उस सहने के काबिल ना हो असल में। अब आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आखिर में कह रहे हैं अफला ताकिलून, अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे हैं कि अफला तालमून कि तुम्हें इल्म नहीं है क्या। ये एक दूसरी डिस्कशन है। देखें एक अकल और इल्म का जो आपस में तवाजन है असल में उलमा के दरमियान या आम लोगों के दरमियान, या जिस तरह साइंसी तौजीहात पेश की जाती हैं कुरान की भी और ईमान की भी और कायनात की भी इस तरीके से, और ईमान को साबित किया जाता है, तो इल्म तो उस बंदे के लिए जरूरी है जिसके पास इल्म नहीं है। लेकिन ईमान का जो ताल्लुक है वो असल में इल्म से नहीं है, वो इंसान की तदब्बुर और तफक्कुर से है, और यही इशारा अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं। कुरान में हम देखेंगे कि जब भी अल्लाह ताला बात करते हैं ना उसकी ईमान की, तो वहां पे आपको अल्फाज आएंगे अफला तफक्करून के आएंगे, अफला या तदब्बरून या इस तरह के अल्फाज आएंगे कि आप तुम सोचते क्यों नहीं हो, फिक्र क्यों नहीं करते हो। असल में ये भी ये जो अल्फाज है ना ये भी दर्जात हैं फिक्र के असल में, कि ताकिलून जो है ना इसका मिनिमम दर्जा है असल में, ठीक है ना, जो कि असल में फिक्र से पैदा होता है। जो फिक्र है लाजमी बात है वो ईमान का नतीजा है, कि जो फिक्र होती है ईमान ड्राइव करता है आपको सोचने पे। देखें हमें हम बिजनेसमैन हैं, हमें पता है ना एक फिक्र लगी होती है कि पैसे कमाने हैं, तो उसके लिए फिर हम हर किस्म की चीज़ों को सोचते हैं, उनको जोड़ते हैं आपस में, नतीजे फिर किस तरीके से मेरा माल बेहतर हो जाएगा, किस तरह मेरा कस्टमर सर्विस बेहतर हो जाएगी, किस तरह मेरा मार्केटिंग बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ईमान का मामला है उसमें भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम लोग इन चीज़ों को आपस में जोड़ते क्यों नहीं हो, कि जो जो पहली बात है और जो दूसरी बात है आपस में जोड़ने में क्या मसला है आपको। अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि असल में आपके सोचने की जो ताकत है अल्लाह ताला ने, ये जो शऊर है इंसान का, पहले भी हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, जो शऊर है इंसान के अंदर वही असल में फैसला कुन ताकत है, और उसी का असल में यहाँ पे दुनिया में टेस्ट हो रहा है, और उसी शऊर को हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। जो इलम है वो आपको इनलाइटमेंट देता है, इस शऊर को आपको मवाद प्रोवाइड करता है, इलम हासिल करना लाजमी है, उसको भी अल्लाह ताला ने फर्ज करार दिया है, ठीक है। लेकिन वो इलम बुनियाद है, वो सब कुछ नहीं है। उस इलम की बुनियाद पे जिस तरह दुआ भी सिखाई गई है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि अल्लाह ताला मुझे इल्म नाफे दे, यानी उस इल्म को नाफे बनाने में, जिस तरह पिछली दफा भी हमने कहा था कि कोई भी जो नेमत है इल्म अपनी जात में नेमत है इंसान के पास, वो तभी आपकी हिदायत का तभी ही वो आपके लिए नफा का बायस बनेगी जब वो उसमें हिदायत शामिल हो जाएगी। तो उसी हिदायत की फिर अल्लाह ताला यहाँ पे कर रहे हैं। अमूमन एक बात आती है कि कुरान जो है ना बनी इसराइल के साथ डायरेक्ट बात कर रहा है और सख्ती से बात कर रहा है ना, लेकिन अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ के पैगाम को देखेंगे और बाइबल में, तो ईसा अलैहिस्सलाम ऐसी ही एक बात उनसे मरवी है, जिस तरह कोट करता हूँ मैं, ये मैथ्यू 23 है, 23 ये आयत है असल में, उसमें वो कह रहे हैं कि द टीचर्स ऑफ द लॉ एंड द फरीसीज सिट इन मोसेस सीट्स, यानी कि जो मेंबर पे बैठे हुए हैं ईसा मूसा अलैहिस्सलाम के मेंबर के ऊपर, सो यू मस्ट बी केयरफुल टू डू एवरीथिंग दे टेल यू बट डू नॉट डू व्हाट दे डू फॉर दे डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। बिल्कुल यही आयत अल्लाह ताला ने दोबारा यहाँ पे नाजिल की है, जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल फरमाई थी कि तुम लोग जो मेंबर पे बैठ के जिस चीज़ की तालीम देते हो तुम उसमें अपने आप को भूल जाते हो। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, अब देखें ऊपर से जो बात हुई है उसकी अब अल्लाह ताला अगली गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने एक दावत दी है उनको, और फिर ये है कि अल्लाह ताला दावत दे के छोड़ नहीं देते, बल्कि अल्लाह ताला की मदद साथ ही आयत में आ जाती है। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सला, यानी तुम लोग इस्तियानत हासिल करो सब्र से और सलात से, यानी कि जिस प्रॉब्लम में तुम लोग घिर गए हो उसका मेन जो सोल्यूशन है वो यही है कि तुम सबर और सलात से जो है ना मदद लो। इस्तियानत पे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं, इस्तियानत क्या है। इस्तियानत मदद की वो किस्म है कि जिसमें आप खुद पिवट बनते हैं और फिर किसी किसी से पुकारते हैं कि मेरी जो है ना हेल्प कर लो। कि फर्ज की आप मोटरवे के ऊपर आपकी गाड़ी जो है ना ख़राब हो गई है, उसका टायर पंक्चर हो गया, तो एक तो तरीका यही है कि मैं उतरूं नीचे, अपना टायर चेंज करने की कोशिश करूं और किसी गुजरते हुए शख्स को कहूं कि यार मेरी हेल्प कर लो। क्यों? तो इसको कहेंगे इस्तियानत मांगना, मैं एक काम कर रहा हूं और उसमें मैं किसी से जो है ना उसकी हेल्प मांग रहा हूं। और दूसरा तरीका तो यही होता कि मैं गाड़ी के अंदर बैठता और कॉल करता कि मेरी जो है ना टायर पंक्चर हो गया गाड़ी का, वो ठीक कर दो, तो उसको इस्तियानत हम नहीं कहेंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यू हैव टू एक्ट फर्स्ट एंड देन कॉल अल्लाह, यानी दुआ की जो किस्म है, जिस तरह सूरतुल फातिहा में भी अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है कि हमें जो सिराते मुस्तकीम की तरफ हमने अल्लाह ताला से इस्तियानत मांगी है, उसमें यही इसका मतलब है कि आई विल स्ट्राइव एंड यू प्लीज हेल्प मी। तो सबर पहले आया है और सलात पहले आया है। अब सलात का मतलब क्या है? सलात असल में मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हुआ है कुरान में, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में, उसमें एक इसका मतलब है नमाज, जो इसके इस्तेलाही माने हैं। सला असल में ये है कि इसका रूट आता है कि अगर एक छड़ी टेढ़ी है, ठीक है, और उसको आग के ऊपर जब आप लेके जाते हैं उसको सीधा करने के लिए, तो इस प्रोसेस को सली कहा जाता है असल में। इसको अगर आप देखेंगे इसका रूट वर्ड से क्या ताल्लुक बनता है हमारी नमाज का, तो इसका मतलब ये है कि जब हम नमाज के अंदर होते हैं और अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ते हैं खुशू खुजू के साथ, तो असल में हमारा जो रूह है, रूहानी ताल्लुक है अल्लाह ताला से, उसको हम सीधा कर रहे होते हैं, यानी उसको सिराते मुस्तकीम पे डाल रहे होते हैं। तो ये इसका जो है ना, अब ये कि सबर पहले क्यों आया, सलात बाद में आया, यानी कुरान के अंदर जो तरतीब होती है कलाम के अंदर उसका एक खास मकसद होता है। इसका मतलब ये है कि जो सबर है, जब भी क्योंकि ऊपर आपने देखा कि ऊपर अफला ताकिलून की बात हुई थी ना, कि जो मेरे अंदर जो फिक्र पैदा होगी, तो जब मैं उसमें इस्तियानत की हालत में दाखिल होऊंगा तो सबसे पहले जो चीज मुझे फेस करनी पड़ेगी वो सबर होगा असल में। यानी जब मैं उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आऊंगा अपनी फिक्र को अल्लाह ताला के मामले में, जो अल्लाह ताला मुझे गाइड कर रहे हैं, तो मुझे देख जो अपोजिट विंड है ना उसको मुझे फेस करना है। तो उस अपोजिट विंड को फेस करते हुए आपको तकलीफात होंगी, मुसीबतों में आप डलेंगे, लोगों के साथ मामलात में प्रॉब्लम होंगी आपको, लोग आपको तनकीद का निशाना भी बनाएंगे, आपके अंदर गलतियां निकालेंगे, आपको अप्रिशिएट, जरूरी नहीं कि हर बंदा आपको अप्रिशिएट करेगा, बल्कि अक्सरियत लोग वो होंगे कि वो क्योंकि खुद वो काम नहीं कर रहे होंगे, तो जब आप कर रहे होंगे तो उसमें उनके अंदर एक जन डेवलप होता है ऑटोमेटिकली हर इंसान के अंदर, कि वो कहता है कि यार ये है और वो है, और नेगेटिव जो वाइब्स है ना वो जनरेट होती हैं। तो उस नेगेटिव वाइब्स का अगर आप किसी डायरेक्टली उस बंदे का ताल्लुक है तो वो आपको इफेक्ट करेगा। तो ये जो डीमोटिवेशन प्रोसेस है किसी भी अच्छे काम करते हुए आपको, उसमें फिर आपने स्टेडफास्ट रहना है, यानी जो सबर है, सबर बर्दाश्त का इल्हामी पैमाना है असल में, ठीक है, कि आप जो बर्दाश्त अल्लाह की रजा के लिए करते हैं उसको हम सबर कहते हैं असल में। तो अल्लाह ताला कहता है कि जब तुम सबर की जरूरत पड़ेगी, और सबर तो तुम करोगे, तो उसके लिए तुम्हारी इस्तेआनत का बंदोबस्त यही है कि तुम सलात में खड़े हो जाओ। जब भी तुम्हें अपोजिट विंड हो, जब तुम्हें डीमोटिवेट करें लोग, तो तुम लोग जो है ना अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ और अल्लाह से ताल्लुक बांधो और अल्लाह 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 के साथ डिस्कशन करो डायरेक्ट। यानी जो ये एक एक और पर्सपेक्टिव इसका हम देखते हैं, देखें अल्लाह ताला ने जो सबर और सलात की बार बार बात की है, ये एक जगह नहीं है। देखें इसका मतलब सीधा यही है कि ये तो दो काम हैं, वो इंसान की शऊर के अंदर या इंसान की उसके अंदर व्यवस्थ हैं। यानी अमूमन ये देखा जाता है कि या अल्लाह मुझे सबर दे दे, या अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, तो मैं उस उसके ऊपर कमेंट कर रहा हूँ। देखें ये जो दो चीज़ें हैं ये आपके अंदर हैं, इसकी मदद इसकी दुआ मांगना जो है ना ये काबिल फहम नहीं है असल में। ये हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि वो सबर भी कर सकता है और वो नमाज भी पढ़ सकता है। इसके लिए दुआ की आपको कोई जरूरत नहीं है। इनडायरेक्टली इस आयत का ये भी मतलब बनता है कि आप खड़े हो जाओ, जिस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब कुरान नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला ने जो सबसे पहले बात की उस बिल्लाह में शैतान रजीम, या अय्युहल मुद्दसिर कुम फनजिर व रब्बिका फकब्बिर, ठीक है। आप देखेंगे कि अल्लाह ताला अपने नबी को जो हुक्म दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ और अपने रब की बड़ाई इंतजार करो और अपने रब की बड़ाई बयान करो। तो आप देखेंगे कि इनडायरेक्टली अल्लाह एक और जिस तरह और आयत में पहले भी मैंने बयान किया था कि अल्लाह ताला कहते हैं मैं किसी शख्स पे वो बोझ नहीं डालता हूँ जो वो उसके काबिल नहीं होता। इसका मतलब है कि जो सब्र की कुव्वत है उस पर उतना बोझ नहीं डाला जाता जिससे कि वो सब्र उसका कायम ना रह सके, ठीक है। और या वो ये है कि वो अल्लाह अल्लाह की तरफ जो झुकने का अल्लाह ताला ने रास्ता इंसानों को दिया है, जो सलात जिसको मैं कह रहा हूँ वो भी हर इंसान को दिया हुआ है। तो इसलिए ये बुनियादी टूल्स हैं दुआ से जुड़ने का, यानी कि दुआ का ताल्लुक सबर और सलात के अंदर मौजूद है, उससे बाहर बाहर नहीं मौजूद है। तो अब आप देखेंगे कि अल्लाह ताला बिल्कुल जो वो बात मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ अगली ही अल्फाज में अल्लाह ताला ने उसको स्टैंप लगा दिया है। क्या कह रहे हैं, वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीन। अल्लाह कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत ही मुश्किल चीज है, इल्ला अलल खाशीन, सिर्फ उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है जो खशियत रखते हैं अल्लाह ताला का। यानी कि जो प्रॉब्लम हम लोग बयान करते हैं सबर और नमाज के मामले में कि मेरे वास्ते दुआ करो जी मैं नमाजी बन जावा, अल्लाह मेनू सबर दे देवे, ये जो बैठकों में लोग बैठ के ना गुस्सा करते हैं और ये इस अल्टीमेटली ये कोई चीज नहीं होती है। हर बंदा सबर से बात कर सकता है, हर बंदा तसल्ली से बात कर सकता है। असल में ये इंसान का वो दर्जा होता है, ये जो गुस्सा करने वाले और बाहें ऊपर कर लेने वाले और माहौल को खराब करने वाले जो लोग होते हैं वो असल में जानबूझ के, उनको पता होता है सारी चीजों का, ये नहीं कि उनको नहीं पता होता कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एवरीबॉडी कैन कंट्रोल हिमसेल्फ एक्चुअली, जिस मामले में वो होता है असल में वो कंट्रोल करना नहीं चाहता, वो आपके कम्युनिटी के अंदर या आपके मामलात में बगावत के दर्जे पे चला जाता है कि मुझे किसी की क्या परवाह है, मैं कोई इनके घर से खाता हूँ या सारा जिस तरह भी वो सोचता है ना। तो मैं कहता हूँ कि ये चीजें असल में काबिल कंट्रोल होती हैं, लेकिन इंसान खशियत के उस दर्जे पे नहीं होता जिस तरह अल्लाह ताला इशारा फरमा रहे हैं कि ये मुश्किल उन्हीं लोगों के लिए होता है कि जो अल्लाह ताला से ताल्लुक में उस दर्जे पे नहीं पहुंचे हैं कि उनके अंदर खशियत क्या चीज है। खशियत असल में जो तकवा है और जो खशियत है, खशियत असल में तकवे का नतीजा है कि इंसान के अंदर जब इंसान फूंक फूंक कर चलता है और सोचता है और फिक्र उसके अंदर आती है तो वो अल्लाह ताला की हकीकत को समझ जाता है असल में, कि अल्लाह ताला की जो उसकी जो कायनात है या जो उसका जो जिस तरह वो छाया हुआ है जमीन और आसमान और कायनात के अंदर, या इंसान का अल्लाह ताला से जो ताल्लुक है जिस नेचर का वो उसको भांप लेता है, ठीक है। तो वो जब अल्लाह ताला के, मैं मिसाल देता हूँ, फर्ज किया कोई केस प्रोसीडिंग है अदालत में आप होते हैं और जज के सामने जो आपकी फीलिंग्स होती हैं उस वक्त पुलिस एकदम आपको गाड़ी रोकती है और आपको उसकी हैबत आपके ऊपर तारी हो जाती है कि बोला भी नहीं जाता बस दफा, यानी कि आप रुक रुक के बोलते हैं कि आप आवाज जो है ना निकलती नहीं है इंसान के मुंह से। तो और बाज दफा ऐसे हालात होते हैं कि आपके जो जिस्म के बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। वो क्या होता है? वो असल में हकीकत का अदराक होता है कि अब मैं इसके शिकंजे में आ गया हूँ। जब इंसान को हकीकत का अदराक हो जाता है, उसको अल्लाह ताला के सामने खड़े होते हुए या अपने अमाल करते हुए, तो वो खशियत के दर्जे पे जो है ना इंसान चला जाता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि नमाज असल में बहुत ही बड़ी चीज़ है और मुश्किल चीज़ है, सख्त चीज़ है, लेकिन खशियत रखने वालों के लिए नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक तो नमाज है जिस तरह हम लोग नमाज पढ़ते हैं ना, कि जल्दी जल्दी ख़त्म करो नमाज, छोटी सी सूरत पकड़ी छोटी सी और उसके मामले को रफा दफा कर लिया। हमारा असल में टारगेट यही होता है अमूमन, जो हमें सिखाया गया है कि यार मैं नहीं पढ़ूंगा ना तो मुझे गुनाह होगा। हम गुनाह से बचने के लिए ना अमल करते हैं जितने भी हमारे अवामिल होते हैं। तो ये मिनिमम दर्जा होना भी चाहिए, ये मैं नहीं कहता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन ये असल रिक्वायरमेंट नहीं है। और इंसान का ताल्लुक खुदा से डिवेलप इस तरीके से नहीं हो सकता कि वो सिर्फ गुनाह से बचने के लिए कि आखिर में मेरे से हिसाब होगा, नमाज का तो चले मैं अपनी नमाज का कर लेता हूँ, ठीक है आपने सही कर लिया। लेकिन जो अल्लाह से ताल्लुक का मामला है कि जो आपको इस्तेआनत आनी है अल्लाह ताला की तरफ से, आपकी सब्र के पैमाने में और आपकी सलात के पैमाने में और लोगों के सामने स्टेडफास्ट होने के मामले में, कि आपके अंदर जो दिल के अंदर जो सुकून लेके आएगी ये नमाज, या जो अल्लाह से एक इंडिपेंडेंट ताल्लुक बनाएगी कि आप लोगों से मामला करने के बजाय अल्लाह से मामला करने के लिए करना शुरू कर देंगे, वो मामला डिवेलप नहीं होता। और अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये मामला बहुत कम लोगों का डेवलप होता है, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो उस दर्जे से न ही सब्र करते हैं और न ही सलात करते हैं। असल मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे रोकता हूँ अभी, मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है। मैं अब मौका दूंगा, देखता हूँ कि किसी ने सवाल भी किया है, अगर कोई सवाल है तो आप सवाल करें, किसी ने अभी बीच में कमेंट करना है तो कमेंट करें इंशाल्लाह।
जो गुनाहों से जो बचना है वो भी इसी के फॉर्म में है सबर की, कि आपको डेफिनेटली डिज़ायर आ रही है और डिज़ायर हर इंसान में आती है। ऐसा नहीं कि अगर आपने एक दफ़ा कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया तो आपकी डिज़ायर से ख़त्म हो जाएगी।